ஓம் நம சுதேபியோ நமோரியந்தாளம் நமோ சித்தாளம் நமோ ஆயிரியாளம் நமோ வஜ்ஜாயாளம் நமோ லோயே சர்வசாஹுரம் மங்களம் பகவான் வீரோ மங்களம் கௌதமோபனி மங்களம் குந்த குந்தாத்யோ ஜெயந்த தர்மஸ்து மங்களம் சர்வ மங்கள் மாங்கல்யம் சர்வ கல்யாண காரகம் பிரதானம் சர்வ தர்மாணாம் ஜெயனம் ஜேது சாசனம் ஜெயனம் ஜேது சாசனம் நமோ தீர்த்த நாயகனே நமோ ஓங்கார நாதனே ஓங்கார சங்கரயோஜனே நமோ தே குந்த குந்தனே உபகார ஜினவரணோ குந்தனோ துவனி தேவினு ஜின குந்த துவனி ஆப்யா பௌதே குரு பிராணனோ. மோனா கே துவாரா ஆயோஜித் யே சிவிர் வாஸ்தவ மே பஹுத் ஹி ஹம் சப்கே லியே கஹனா சாஹியே தர்ம ஜ்ஞான பிரதாதா சித்த ஹோ ரஹா ஹை. கல் அந்திம் தின் ஹை நா, अष्टान का पूर्ण हो जाएगी, अच्छे अच्छे विद्वानों के द्वारा अपने को गंभीर प्रश्नों का लाभ मिला। मैं तो इसके लिए मोना के सभी सदस्यों को, उनके आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, देता हूँ। आई रियली फील माई सेल्फ वेरी मच थैंकफुल फॉर देयर दिस अरेंजिंग दिस ग्रेट सेवर सेमिनार। देखिए, ये लोग अर्थ भी खर्च कर रहे हैं और ज्ञान भी अर्जन कर रहे हैं, विदेश में रहते हुए भी। और इसलिए मैं के बाद में रहना चाहेंगे, बिकॉज दिस इज माई लास्ट लेक्चर टुडे। सो आई वुड लाइक टू थैंक बोथ द गोसलियास, डॉक्टर क्रेग भाई गोसलिया एंड रजनी भाई गोसलिया, हु कुड नॉट कम हियर बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। एंड नवीन भाई तेजानी, डॉक्टर सुशीला बेन एंड अदर हु हैव कम, भाभी भाई, भाभी रोहित जी और मनीष जी एंड मेनी अदर पीपल हैव कम फ्रॉम अब्रॉड। मैं बहुत प्रसन्न हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैं 6 साल से प्रवचन सार लेता हूँ हर शनिवार को, कभी अनुपलब्ध भी होता हूँ मैं। और इन लोगों के क्वेश्चंस वगैरह से मैं इतना खुश होता हूँ, क्योंकि ये लोग हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, तो एक टिप में समझते हैं। इनको दोबारा ज्यादा नहीं एक आध क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सब ब्रेनी है, दिमाग वाले हैं, हाईली एजुकेटेड है, डॉक्टर इंजीनियर्स हैं। और मुझे भी वो साइंटिफिक लैंग्वेज में पढ़ाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि बाकी मेरा लोकल जो कहिए गार्ड्स तक कोई जीवन ही बन नहीं है ना, मुझे उधर के उदाहरण भी आते हैं ना पसंद भी है। मैं तो जो आचार्य भगवंतों ने उदाहरण दिए हैं जनागम में, उनको ही सुनता हूँ, उनके माध्यम से जिन धर्म की कहना चाहिए वस्तु सिद्धि करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद देने के बाद अब मैं अपने आज की व्याख्यान पर आता हूँ। लंदन वाले हमारे भीमजी भाई ने मेरे से कहा कि पहले दिन आपने ये सुरत स्कंद के बारे में कहा था, मुझे पुनः उसके बारे में कुछ समझना है, बहुत अच्छा लगा था। देखिए, ये दिव्य ध्वनि का दिव्य ध्वनि जो कृति है ओंकार गर्जना रूप, जिसको हम पढ़ते हैं उसमें सरस्वती पूजन में तीर्थंकर की ध्वनि कम करो, तीर्थंकर की ध्वनि गंधर्व ने सुनी अंग रजे चुनी ज्ञानमयी, सो श्री जिनवर वाणी शिव सुख दानी त्रिभुवन मानी और पूज्य भई। इस वर्तमान निकृत पंचम काल में वस्तुतः आज जिनवाणी हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय मुक्ति का बतलाने वाली है, साक्षात तीर्थंकर आदि का अभाव है, भावलिंगी संतों का भी अभाव है, फिर भी हम आप इतने भाग्यशाली हैं कि ऐसे काल में जन्म लेकर के भी
कुछ अपना महान साथी से पन्नो उदय लेके आए हैं कि जिसके कारण से आपको अपने को आचार्य कल टोडरमल जी और उसके स्वरूप को समझाने वाले मोक्षवा प्रकाशक थे और समय सार के हार्द को बतलाने वाले कौन पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जिन्होंने सचमुच में देखा जाए तो चौथा काल पांचवें काल का भेद ही मिटा दिया। बोलो क्या भेद है, हम आपको इसमें से पढ़ के बताएंगे। अभी खुद संवर अधिकार में जैसनाचार्य ने लिखा है क्या चौथे काल में क्या आचार्य यानी केवल के हाथ पर क्या आत्मा बताते थे, उनकी टीका पढ़ के बताऊंगा आपको। वो भी आत्मा का स्वरूप कह के चले जाते हैं और क्षेत्र भेद भी नहीं। आप कहीं भी रहो, आज इतना ये जो कहना चाहिए वैज्ञानिक युग कहलाता है, इसमें इतने खोज शोध हो गई, लेकिन खोजने वाले की खोज बाकी रह जाए तो इन सब खोज शोधों का कोई फलितार्थ नहीं निकलता है। लेकिन प्रसन्नता की बात है कि हम आप सब सत्यान्वेषी बनकर, सच्चे आत्मार्थी मोक्षी बनकर उस सत्य को प्रकट करने के लिए चल पड़े हैं उस रास्ते पर। तो उसके लिए ये बात बतलाना थी, ये श्रुत स्कंध कैसे निर्मित हुआ, क्या है, कल भी किसी का प्रश्न था। तो तीर्थंकर भगवान की परमोदरिक देह ओम गर्जना रूप गर्जित होती है और उसमें ऐसी दिव्यता होती है ओम साउंड में कि सब प्राणी अपनी भाषा में साक्षर रूप होकर के वो अपना जो प्रश्न है उसका समाधान पा जाते हैं। चार ज्ञान के धारी गणधर आचार्य कोई वहां लिखते नहीं बैठते रहते जैसे अपन लोग लिखते रहते हैं किसी का सुनकर कि साहब इतना तीर चला गया छूट गए। अरे उनको ऑलरेडी द्वारसंग का ज्ञान का छिवसम प्रकट हो गया है, वो सुनकर के उनको सारा अपने आप अंतर मूर्त में यानी समझो एक मूर्त के भीतर उसका पाठ करने निबद्ध कर दे और वो सब मौखिक चलता चलता चला जाता है। पंचम काल में जो अनुबंध केवली हुए, अनुबंध केवली तो ख्याल है ना आपको, भगवान महावीर स्वामी के बाद कौन हुए, इंद्रभूति गौतम गणधर वो केवली हुए 12 वर्ष तक। पंचम काल का 3 वर्ष 15 दिन कितना समय बाकी था जब भगवान को मोक्ष हो गया और उसके 12 वर्ष बाद उनके निर्वाण के 12 वर्ष बाद किनको मोक्ष हो गया, गौतम स्वामी को। केवल ज्ञान तो उनको उसी रात्रि में शाम को ही हो गया था, भगवान का निर्वाण प्रातः शाम को उनको केवल ज्ञान धारा रुकी नहीं। और उसके बाद 12 वर्ष तक कौन रहे, सुधर्माचार्य, उनको भी गणधर अपने इंद्रभूति को केवल मोक्ष कल्याणक हुआ, मोक्ष हुआ और मोक्ष होते ही इनको सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान हो गया, इसलिए ये अनुबद्ध केवली। और उसके बाद जम्बू स्वामी, सुधर्म स्वामी को मोक्ष होता है निर्माण होता है और जम्बू स्वामी केवल ज्ञान प्रकट कर लेते और वो 38 वर्षों तक केवल ज्ञान धारा उनकी चलती, ऐसा कुल 62 वर्षों तक केवल ज्ञान का लाभ मिलता रहा। भगवान महावीर स्वामी के कहते संस्करण में उनके काल में 700 केवली हुए, ये जना का मतलब 700, भले नाम नहीं मिलते, सामान्य केवली आदि बहुत हो गए, अंतिम ऐसा लिखा मिलता श्रीधर केवली। और उसके बाद द्वारसंग के पारगामी 5 श्रुत केवली हुए, यानी जैसा गणधर को ज्ञान है ऐसा पूरे द्वारसंग का ज्ञान उनको था। और बाद में वो करीब 100 वर्ष तक चला, 162 वर्ष तक की श्रुत की परंपरा मोक्ष की चलती थी, कोई लिपिबद्ध का सवाल नहीं था क्योंकि बुद्धि इतनी शार्प होती थी। हम आपने सुना है कि अकलंक निकलंक जब वो सब उनकी परीक्षा हो रही थी ना, तो पीछे से बौद्ध लोगों के वो कौन सिपाही दौड़े आ रहे थे, तो अंत में क्या किया, निकलंक बोलता भैया तुम रह जाओ, मेरे को मर जाने दो जिन धर्म की रक्षा के लिए, क्यों बड़ा भाई क्यों छोटा क्यों, बोलते हैं सिर्फ एक ही कारण सोचो, आपको एक बार सुनने में याद हो जाता है और मुझे 2 बार में होता है, इसीलिए आपका जीवित रहना जरूरी है। कैसे कैसे लोगों ने कुर्बानी करके इस तत्व को जीवित रखा है। ये परंपरा चलते चलते घटती गई, 11 अंग का, 10 अंग का, 9 ऐसा घटते घटते अंत में अरदवली आचार्य तक एक अंग करीब का ज्ञान रह गया और घटता चला गया। घर्षण आचार्य जो कहना चाहिए अपने ये क्या गिरनार जी की जो गुफा में वहां पर ध्यान रखते, उनको अपने निमित्त ज्ञान से ख्याल हो गया कि अभी आयु ज्यादा नहीं है और मेरे पास जो ज्ञान है कोई अभी मोक्ष तो हो नहीं रहा है, तो उन्होंने सब ख्याल है कि इतना प्रबल प्रसाद नहीं कि श्रेणी आरोह कर सके। तो उन्होंने अरदवली आचार्य जो कि मेहमानगढ़ अभी कोई है सातारा जिले में, कहते मेहमानगर था, वहां पर युग प्रतिक्रमण चल रहा था अरदवली आचार्य के सानिध्य में और बहुत बहुत दूरों से सौ सौ कोसों से समझी लिए बहुत सारे मुनि संघ आए हुए थे। उसमें से उन्होंने बुलवाया कि वे दो महामुनि हमें भेजें जो हम कहें और हमारी बात समझ लें, और इसके लिए वो कौन है, पुष्पदंत और भूतबली। और उनने वो क्या अर्जुन किया, सचखंड आगम लिपिबद्ध हो गया। कब हुआ, भगवान महावीर स्वामी के 683 वर्ष बाद, और उसका जब पूरा हो गया तब वो सुर्त पंची में अपन बनाते हैं। जरा थोड़ा इतिहास बता दिया और उसके ही थोड़े समकालीन डिफरेंस से आचार्य कुंद कुंद हुए और उनके समकालीन हो गए थे एक गुणधराचार्य जिन्होंने कथाएं पाठ लिखा और उसके ऊपर टीकाएं बाद में लिखी गई, धवल जय धवल महा धवल आदि। और कुंद कुंद आचार्य हुए तो उन्होंने द्वितीय श्रुति स्कंद, पहला श्रुति स्कंद कहलाता है षटखंडागम, छह खंड का आगम, वो आगम है और समय सार आदि परमागम है। जो अपन पढ़ते ना सारा करणानुयोग चरणानुयोग सब पूरा, उसमें से जो अपना सार पकड़ ले निकाल ले तो वो सारा कहना चाहिए कुंद कुंद आचार्य देव ने। उनकी आयु 95 वर्ष 10 माह और कुछ 15 दिन की, ऐसा उल्लेख मिलता है। और इतने लंबे काल तक वो करीब 52 वर्ष तक आचार्य पद पर रहे और उनका सब किस्सा मालूम है। ये तो मैंने बताया और जो कुछ सूत्रबद्ध हुआ वो भी सन करीब 1934 की बात है। घटना धवल आदि बाहर नहीं निकल सकते थे मूल बद्री से, मां दर्शन के लिए उपलब्ध थे। तब एक भोपाल के पास विदिशा है, वहां के सेठ लक्ष्मीचंद गजरथ चलाने वाले थे पंचगंगा प्रतिष्ठा में, उनको जाकर के उस समय के उद्भट विद्वानों ने जाके निवेदन किया, सेठ साहब आप ये ग्रंथ छपाओ, इससे आपको महा महा पुण्य बंधेगा, देखो ये काल कबलित हो रहे हैं और अपन इसका कुछ उपाय करें, अपना पुण्योदय होगा। तो उनको सद्बुद्धि आ गई, उन्होंने कहा ठीक है। और सन 34 में कहते उन्होंने 10,000 रुपये खर्च किए, उस समय के 10,000 माने सोचो आज कितना हो। और वो पूरा उसने में से वो कैसे भी धवलादि साथ निकले और फिर उनका अनुवाद होता गया, पंडित फूलचंद जी, हीरालाल जी, डॉक्टर वगैरह सब अपने तक आ गए। इधर समय सार आदि उपलब्ध थे, आपको पता ही है कि जब सबसे पहले श्रीमद राजचंद को मिला तो कितने प्रसन्न हो गए, कहते वो रत्न मुट्ठी भर दे, क्या है उसमें ऐसा जग। मैंने अपने जीवन में जब पहली बार ग्रंथों के नाम सुने थे समय सार, प्रवचन सार, खासकर समय सार, तो मैंने क्या सोचा था, आजकल जो टाइम चल रहा ना आजकल के समय का क्या सार है, अपनी बात बता रहा हूँ। समय सार नाम है, समय किसे कहते हैं, अरे भैया समय बीतता जा रहा है, समय का सार समझो। अरे पता ही नहीं था कि समय माने क्या होता है, समय माने शुद्ध आत्मा आदि और सब नाम दिए ना। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री की कहना चाहिए वो ताकत, जब उनको कहा गया मुझे पट्टी मत छोड़ो और तुम भले दिगंबरों की बात करते रहो अन्यथा तुम्हें रोटियां नहीं मिलेंगी, ये सब हमने 1966 में 18-19 साल की उम्र में सुना था, पूरे याद है, अकेला गया था सोनगढ़ पूछी थी, तो ये बात आई थी। तो वहां पर गुरुदेव ने कहा ये तन जो है अवधारित शरीर है और अगर आयु लेके आया है ये जीव इस अवधारित शरीर में, समझ लो 70-80-90 वर्ष की टिकने की, तो रोटियां इसके पीछे दौड़ेंगी आप चले जाइए, सत्य से कोई समझौता नहीं हो सकता। ये बल अंदर का आत्मबल चाहिए,
सम्यक दर्शन सबसे सरलतम चीज है। मैं आप शायद वर्षों से चिल्ला की बात कहता हूं चेतन में कुछ नहीं तुम हो, तुम अपने स्वरूप अस्तित्व का विश्वास नहीं ला पा रहे। जो कार्य पिनेंच नार की प्रतिकूलता में कर ले और इतनी बढ़िया अपने को बिल्कुल पका पकाया माल हलवा मिल गया, पहले तो उन लोगों ने क्या क्या किया है, कैसे खोजा है, तो कौन सी बड़ी चीज है दृष्टि सम्यक करना। पहले ये भ्रम छोड़ दो, पहले स्वरूप अस्तित्व का यथार्थ निदान निर्णय करो। तो जो भीमजी भाई ने कहा श्रुति स्कंद क्या है, ये तो मैंने थोड़ी उसका इतिहास बताया। अभी जो गणधर आचार्य झीलते हैं उसके उस श्रुति के दो अवयव बनाते हैं, एक अंग भाई और एक अंग प्रविष्ट। जो आपके पास ये ना पुस्तिका, इसमें जो चित्र लिया है ये पूरा उसी का है जो यहाँ बना हुआ है श्रुति स्कंद। माने गणधर आचार्य जो अंतर्मुख में रचना कर लेते हैं ऐसा उनका कहने की अधिकतम यानी पूर्ण श्रुत ज्ञान की ताकत विकसित जब हो गई तो ऐसा उनको ये सब ज्ञान में पूरा सेग्रीगेट होता हुआ कौन सा किसमें ही चला जाता है। तो इस प्रकार से अंग वायु और अंग प्रविष्ट, अंग वायु माने शब्द ही बतला रहा है, अंग माने आत्मा होता है, अंग तीति आत्मा ऐसे सब आते हैं। कोई कहता ना मेरे अंग मत पकड़ो, मुर्दा नहीं कहेगा, उससे अंग कहने से आत्मा सिद्ध होता है, उसमें आत्मा है। तो ऐसा उसमें सिद्ध किया अंग वाय ने, माने जो धर्म की प्राप्ति के लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो वाय में व्यवहार साधन आदि होते हैं और उसमें देखना 14 भेद है, उसका नाम है कुंडली। क्या बोलते अंग वाय में प्रकीर्ण, प्रकीर्ण अच्छा उसके 14 भेद है। और अपने को नहीं पता है कितना कितना ग्रंथ होते थे, अभी तो अपने पास एक अंश है और उसमें थोड़ा सा छोसम ज्ञान हो जाए ओह तो ये जीव समझता में हो गया, क्या हो गया अंधों में काना राजा हो गया और कुछ नहीं हो गया, ऐसा कहावत है अंधों में काना राजा हो गया, समझता है बहुत पढ़ा लिखा है। जब तक स्वरूप संपदा को नहीं लगता तब तक उसका कुछ भी नहीं हुआ, वो वहीं खड़ा पड़ा है। तो इसमें कहा अंग वाय में 14 प्रकीर्ण और जो अंग प्रविष्ट है, अंग प्रविष्ट वास्तव बतला रहा है आत्मा में प्रविष्ट होने का सारा कथन उसमें आएगा, यद्यपि उसमें भी बहिरंग आदि सब चीजों का कथन होगा और वो लेकर के उसके द्वादशांग भी रहे। प्रथम ही आचारांगणी दूजो सूत्र कृतांग छांग तीजो सबक चौथो संवायांग व्याख्या पाणी पांचों ज्ञात्री कथा सठांग पुनिपात का अध्ययन सप्तमो, ऐसे पूरे 12 अंग हम बचपन में पढ़ते थे, नामों लिख तो इतना याद रहा। आज भी कोई भी उपलब्ध नहीं है। तो जो 4 अनियोग के द्वारा वीतराग की प्राप्ति के लिए अपन ने शिविर लगाया और कर रहे हैं, ये 4 अनियोग की रचना नहीं करते गणधर आदि आज, ये तो जो बचा खुचा था उसको समन्वभद्र आचार्य देव ने जब रत्नकरण श्रावकाचार्य लिखा तो सम्यक ज्ञान के अंदर में कब इनको सेग्रीगेट करो कि इनको अब जो कुछ अपने पास ज्ञान उपलब्ध है शास्त्र में सूत्रबद्ध है और ताड़ पत्रों पर उसको उन्होंने 4 अनियोगों में विभाजित किया। इसके लिए मैंने पहले दिन कहा था कि जैन दर्शन में इतिहास की भी पढ़ाई है, भूगोल की भी पढ़ाई है, गणित की भी पढ़ाई है, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी पढ़ाई है, मैथमेटिक्स हो गया गणित करण, अरे द्रव्यानियोग इज नथिंग बट रियल मेटाफिजिक्स और करणानियोग इज नथिंग बट माने आपका मैथमेटिक्स। जो इंजीनियरिंग में मैंने गणित पढ़ा था सब हमारे छक्के छूट गए जब मैंने उसमें जैन सिद्धांत को शादी में देखा मोमटसार में, जो थ्योरम हम लोग पढ़ते थे कुछ सारे सूत्र लिखे बड़े पड़े उसमें। आपने सुना हो एक विश्व प्रसिद्ध महिला हुई वो शकुंतला देवी, सुना है ना आपके यहाँ भी बताए, कंप्यूटर बाद में जवाब देगा लेकिन उसके पहले उसका जवाब आ जाता था। DHL में भी एक बार आए थे तो उसमें उसका प्रदर्शन हुआ था, पूछा गया उससे, बहुत मैं तो नहीं था उसमें लेकिन मालूम पड़ा था बात, क्या आप इतने जल्दी कैसे जवाब दे देते, बोले हम बचपन से अंक गणितों से खेलते थे जिसमें महावीर माने और कोई वेद में आदि जो गणित आदि की बात है उससे, और कैसे इतना टिप में क्विक हो जाता है,
जैसे अपन खंचन भाई वगैरह बोलते थे ना, नौ अंक अफर होता है, अफर समझते ना, नौ अंक अफर होता है देवीलाल जी। कैसे अफर होता है केतन भाई? फरता नहीं है ना, नौका जो टेबल है पहाड़ा ऑलवेज उसका सम टोटल नौ रहेगा, नौ अठारह सत्ताईस छत्तीस पैंतालीस चौवन तिरसठ बहत्तर और 81 और 90, आगे भी चले जाओ। अब अपना क्रॉस चेक कर सकते हो कि हमारा हल किया सवाल सही कर रहे हैं। आठ का होगा तो एक घटता जाएगा, आठ के बाद 16 वन और सिक्स, उसके बाद 24 टू एंड फोर, आगे घटा लो तीन और दो 32 पांच 40 में चार, एक शब्द में लाना, एक अंक में लाना, घटता चला जाएगा। तो ये सब ट्रिक होती है, न्यूरोलॉजी होती है ना, बहुत बड़ी साइंस है न्यूरोलॉजी। खैर ये बात तो मैंने बताई। तो इस प्रकार से ये समंत वर्धाचार्य देव ने ये चार अनुयुगों में सेग्रीगेट किया और बताया। तो रियल मेटाफिजिक्स जिसके पास है वो कभी गुमराह नहीं हो सकता, जिसको कहते हैं शुद्ध अध्यात्म, और उसकी चर्चा अपन यहाँ कर रहे हैं। और जो बात कही गई थी कि इतना हम वर्षों से सुन रहे हैं, अभी अपने को रोना धोना बंद करना चाहिए, पर हमको नहीं हो रहा। उन्होंने तू है ना, उसका स्वीकार करना पहले, जो है तेरा जो स्वरूप अस्तित्व है, सम्यक दर्शन दौड़ा चला आएगा अंदर से, इतना ज्ञान में इतना दृढ़ निर्णय होना चाहिए। क्षेत्र सात तत्व नौ पदार्थ का सिर्फ आगम से नहीं, शब्दों से नहीं, भाव भाषण पूर्वक, राग त्रिकाल दुख रूप है, ये उसका आत्मुख लक्षण है। आत्मुख लक्षण समझते कनु भाई, जो सदाकाल उसमें पाया जाए। कि राग किसका हो, ज्ञानी का क्या ज्ञानी का, किसी का भी क्यों ना हो, वो आग है, वो आतुलता पैदा करने वाला है। जिसको ये पता चल गया फिर वो राग रूपी अंगारे को पकड़ेगा क्या? लेकिन हमने देखा है गांव में पहले गैस सिलेंडर नहीं होते थे ना, तो कोलसा के वो सब जलते थे कोयले के, तो कभी कभी खुद देखा मैंने अपनी माँ को, वो अब नहीं मिल रहा उठाने का, क्या चीपी हो जो भी बोलते, यो अंगारा पकड़ो रे डाल दिया, करते थे कि नहीं करते थे, कोई देखे अंगारा पकड़ने लायक है, बहुत सारे लोग जानते हैं। तो ये पकड़ पकड़ का अंतर है, समय दृष्टि की पकड़ और मिथ्या दृष्टि की अकड़, बस इतना फर्क है। जैसे बिलाड़ी का दृष्टांत दिया आचार्य ने प्रसाद सिद्ध उपाय में, चूहे को पकड़ती है और अपने बच्चे को पकड़ती है। तुम कहां भी किस भी परिस्थिति में रहो, अगर ये अपना हृदय स्वीकार कर जाए श्रद्धांत में, जो मिलना है वो मिलेगा, जो जाना है वो जाएगा। बाहर का संयोग वियोग खड़े खरंडे पर्सन ना दुख देता ना सुख देता, लगता अपने मूल के अधीन से। असली तो काम ज्ञान का, जो टॉर्च जो मिली है पूंजी मति श्रुति ज्ञान, इसका दुरुपयोग ही संसार है और इसका सदुपयोग ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष। समय के सदुपयोग से समय सार की प्राप्ति होती है और समय के दुरुपयोग से शुद्ध संसार की प्राप्ति होती है। संसार भी शुद्ध होता है, हाँ शुद्ध संसार, मैं कई बार बोला हूं बताऊ शुद्ध संसार। एक व्यक्ति शराब पिए और बहुत उद्दंड प्रकृति का था, घर पर पत्नी से मारपीट करे जाए पड़ा रहे, तो एक दिन वो लड़खड़ाता है कि मेडिकल शॉप पर पहुंचा, ए मुझे जहर की शीशी दे, मुझे मरना है, सुनना मैं तो बोलता हूं। तो उसने कहा भैया हम देते तो नहीं, लेकिन तू यहां मत पीना, यही मर जाएगा तो मुझे जेल में जाना पड़ेगा। तो क्या किया जाए? हाँ दे तू। तो उसने रोज वाटर गुलाब जल होता है ना, उसकी शीशी कागज में लपेटी और उसकी जेब में, यार चुपचाप जा घर में पी लेना, वहीं मरना, यहां मत मर। और वो लड़खड़ाता पहुंच गया घर में कैसे भी, और पी करके क्या हुआ, सो गया और सवेरे एकदम फ्रेश उठा। तो उसको इतनी गुस्सा आई, ये भारत में शुद्ध जहर भी नहीं मिलता, बहुत महत्वपूर्ण है।
हाँ जहर भी शुद्ध होता है, सुनना ये जयंद्रसन कहता है। शुद्ध का मतलब उसमें वो अर्थ क्रिया पाई जाना चाहिए। जहर का काम है प्राण घात कर देना, जो प्राण नहीं ले सकता वो जहर कहता। पोटेशियम साइनाइड होता है ना, टच करते ही प्राणांश हो जाता है, आतंकवादी आदि करते रहते ना प्रयोग। तो जिस जहर उसमें अर्थ क्रिया नहीं, तो ये ज्ञान स्वामी आत्मा अपने सुख को खोज रहा है, इसमें कह रहे तेरे में भरा पड़ा है, तू बाहर कहां खोजता है। ऐसी दशा हो गई, एक टोरमल जी सामने दृष्टांत दिया समय ज्ञान चंद्रिका की प्रस्तावना में, एक उसको ऐसा समझो दो बालक एक शेख के करोड़पति अरबपति के, छोटे छोटे बालक समझे एक चार साल का और एक दो साल का, दोनों को डाकू लोग उठा ले गए, फिरौती मानते ना आपसे दोनों को कि कुछ मिल जाए। तो वो तो बहुत वर्ष निकल गए और देखा कि कुछ मिलने वाला नहीं है, उसके माँ भी देहावसान हो गया, पिता है, सब है, और आखिर वो बच्चे उन डाकुओं में पढ़ते पढ़ते बढ़ते बढ़ते भी स्वयं डाकू बन गए, जवान हो गए, और उनको पता नहीं मेरा घर अता पता कहाँ है, कौन है मेरे माँ पिता। कभी कभी वे पूछते तो डाकू डांट देता कि तुरे मेरा घर नहीं तुझे अच्छा लगता, वो बेचारे चुप रह जाते, नहीं तो ये उड़ा देगा, डर जाते। और योग उनका अच्छा आया, उदाहरण द्वारा विस्तृत किया, एक बार उस जंगल की पगडंडी से उसका अंकिल रियल चाचा जा रहा था और उन दोनों बालकों ने, वे डाकू बन चुके थे, उसको पकड़ लिया। वो चाचा ने देखा दोनों बालकों का चेहरा, यही वे बालक हैं मेरे भतीजे, क्योंकि वो चेहरे की शक्ल पिता से मिल रही है, उनको तकलीफ नहीं, मुस्कुराए, अरे मिल गए। तो उनसे कहा सब कुछ धर दे, अरे बेटो सब कुछ ले लो, लेकिन एक बात पूछता हूं। तो एक देखो दो तरह के नेचर आएंगे अपने, अरे जा बुद्धू बना रहा है, अब ये तुम मेरे को पेड़ से बांध दी, बांध दे कस के दोनों, तुम दोनों मार डालना मुझे, लेकिन मुझे एक प्रश्न का जवाब दे, तुम कौन हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा सगा चाचा हूं, तुम अरबपति के लड़के हो, फलाना तुम्हारा गांव है, और तीन दिन पहले जो तुमने डाका डाला था अपने घर में डाका डाल के आए थे। फिर टोड़मे जी का जरा सा दृष्टांत उसको हमने लर्ज करके आपको बताया, घर में डाका डाला था। तो ये देशना मिली, सुनना जरा, तुम अरबपति हो आज भी और तुमने अपने घर पे डाका डाला तुम्हें पता नहीं है, और इसी कारण तुम घर घर की ठोकने खा रहे हो। ये उपदेश उसका देशना सुनते ही एक को तत्काल कुछ विश्वास आया, अवश्य मेरे को ये डाकू कभी बताता नहीं, डाकू का सरदार कौन, कहां से आया, क्या स्वरूप है मेरा। चाचा आप सही कह रहे हैं, बेटा आप सही कह रहे हैं, दूसरे ने कहा क्या पता, क्यों बोल रहा है, फंसाने के लिए अपने को पकड़ लेने। देखो एक ही बात सुन के उसको ऐसा बिचारा था, उसको देर में बिचारा था सब। अब इतने में उसने तो कहा चाचा तुम चले जाओ, सरदार आने वाला क्या, लेकिन दोनों के अंदर में क्या चला, चिंतन चला कि नहीं चला, कौन हूं मैं, क्या स्वरूप है मेरा, क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए समझ, क्या सचमुच मैं अरबपति हूं, फिर इस दर्दर की ठोकरें क्यों खा रहा, और आखिर डाकू उस सरदार को आ गया, चलो आज की प्लानिंग के हिसाब से उस गांव में वहां डाका डालना, अगर कोई मना करता है तो उसको मार डालेगा। चले जाते हैं, डाका डालने जा रहे हैं, या अंदर में उधेड़ बुन चल रही है, इससे कैसे पिंड छुड़ाना। तो ये कहता है आज मैं गेट कीपरी करूंगा, अंदर आप चोरी करना जो करना करना,
मैं बाहर खड़ा रह जाऊंगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, डाका डालते थे, एक बाहर रहता है सारे करते हैं, और उसका फायदा उठा करके वो भाग गया। क्यों, अच्छा काम किया कि बुरा? देखने में क्या दिख रहा है, डाका डालने जा रहा है, और चांस पाते उसने एक समय खराब नहीं किया, और दूसरा वाला फंस गया, बंदर था। बाद में उसको लगा भाई काम दिया, टाइम लगा उसको, और फिर वो भी कैसे छूटा कि नहीं, आप उदाहरण समझो। क्या ये बात सत्य नहीं है कि मैं आत्मा, अरे हो सकता है अनंत आत्मा ने मुझे धारण किया और नहीं धारा, पंचभ्रंश किए नहीं हूं। अभी मानो कि हमको गोल्डन चांस मिल गया है, हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट एंड गेट द सी रिजल्ट, क्यों नहीं हो सकता? ये तो हम कहते हैं अमृत चंद्राचार्य जैसे वीर रस के लिखने वाले टीकाकार चाहिए। वीर रस में लिखा उन्होंने पूरा, 79 का था प्रचन सार, वो कहती है जो महाव्रत आदि का प्रणाम, ये धूर्त अभिसार का प्रणाम, ये मेरे को चलता है शिवराज का टाइम गुण पालने का, ये मेरा, मैं इसको उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने लिखा है, अतो मया मोल वाहिनी विजय बद्ध कच्ची, मोल रूपी सेना को उखाड़ फेंकने के लिए मैंने कमर कसी। और आगे लिखते हैं 82 गाथा आदि में अलमिति विस्तृण है, अब विस्तार से बसो व्यवस्थिता मतिर्मम, ये सब डाला मृत, मेरी मति व्यवस्थित हो गई, दुनिया का प्रणमन तो व्यवस्थित हो ही रहा ऑटोमेटिक, मति अव्यवस्थित थी। अव्यवस्थित का मतलब समझ बराबर नहीं थी, इसलिए मैंने एक दो सूत्र बनाता रहता हूं कि पहले ये नक्की करो कि ज्ञान जो आत्मा का लक्षण है कि राग आत्मा का लक्षण है, लक्षण से लक्ष्य को पकड़ना। और राग क्या ज्ञान को जानता है, क्या जान सकता है? क्रोध अंधा होता है, मान बहरा होता है, माया गूंगी होती है, लोग नक्टा बेशरम होता है, ये नीति साथ का कथन। अंधे को कुछ सूचता नहीं, और मानी होगा तो सुनेगा नहीं तुम्हारी बात, मायाचारी होगा तो छिपा के मन में कुछ, वचन में कुछ, काया से प्रणमन कुछ, और लोभ होगा तो वो कहावत है ना, चमड़ी जाकर दमड़ी में। अमृत चंद्र आचार्य ने प्रचन सार पांचवी गाथा की टीका में ऐसा इतना जबरदस्त शब्द डाला है कि मुझे इतना सुनकर के जब बहुत पहले पढ़ता था वो याद ही हो गया। पांचवी गाथा है कि होती है ना, किच्चा रंताणम सिद्धाणम परिणम वो गणाराणम अज्ञा वै बग्गाणम साहुणम जीव सभी सिंह, फिर तेसम विशुद्ध दंशाण पहाणा समम समासीज उप समयामी सम्मम जत्तो निर्वाण संपत्ति। कहते जो मैंने पंच परमेश्वर अनंतों को नमस्कार करके अब उनका मार्ग क्या है, तो कहते हैं वो गाते ही बोल रही है कि वो पंच परमेश्वरों का मार्ग विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वाभाविक प्रधानता वाला दर्शन है, और उसको मैंने प्राप्त किया है, प्राप्त कर रहा हूं। उसकी टीका में अमृत चंद्राचार्य लिखते हैं, तेसा मेरो अर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु नाम विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधानत्वेन, सहज शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव आत्म तत्व श्रद्धान अवबोध लक्षण ज्ञान सम्यक दर्शन ज्ञान संपादकम आश्रमम समासाध्य सम्यक दर्शन ज्ञान संपन्नो भूत्वा। उन पंच परमेश्वरी भगवंतों के जो कि विशुद्ध श्रद्धा ज्ञान वाला मार्ग है प्रधानता वाला, यानी श्रद्धा ज्ञान नहीं है तो तुम्हारा कोई आचरण कोई मोक्ष मार्ग वाला नहीं है। और वो किसका श्रद्धा, तो लिखा है अपना विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव आत्मा का श्रद्धान अवोध लक्षण ज्ञान, इसका नाम है सम्यक दर्शन ज्ञान। इसको जिसने संपादित कर लिया वो सम्यक दर्शन ज्ञान सम्यक ज्ञान से संपन्न हो गया, यानी आंख खुल गई। रोड क्रॉस करने आंख बंद करके करोगे मरोगे मारोगे एक्सीडेंट करोगे, लेकिन आंख खोल करके चलोगे तो बच निकलोगे। एक सारा काम ज्ञान का है, जैन न्याय के यहां तक दृढ़ता से कह रहा है तुम्हारी भूल उचली विषय समय कुछ नहीं है, विषय तो सदाकाल दर्शन देने को बैठा है, परिणाम भाव कहां भाग्य कहां जाएगा। दर्शनार्थी ज्ञान मति सुर ज्ञान प्रदर्शन में फंसा है, आत्मदर्शन नहीं करता और राग के कहने में चलता है, राग की बात मानता है, सैर सपाटा करना, इधर घूमना उधर घूमना है। जिस दिन अंतर में ये बात लगे, भव वन में जीवर घूम चुका, क्या देखना बाकी रहा तुझे, तो वो आगे लिखते हैं कि समय दर्शन ज्ञान संपन्न हो गया, भेद ज्ञान की आंख खुल गई। करना क्या था उसमें, कि जिसमें कुछ करना नहीं है, करना छोड़ना है, उसका नाम भेद ज्ञान हो जाता है। राग का स्वरूप है करना, ज्ञान का स्वरूप है जानना। जब तक राग और ज्ञान साथ चल रहे तो एक खींचता है करो और एक कहता है जानो, लेकिन ये जानने वाला ज्ञान, इसका अज्ञान नाम दिया आचार्यों ने। क्यों? तो राग के कहने को मानता है, राग की आज्ञा में चलता है, राग का चार्टर क्या डिमांड चार्टर आता है, मुझे आज खीर खाना है, व्यवस्था कौन करता है? ज्ञान, कितना मिलाना, क्या लाना, कैसे करना, तो किसका गुलाम बन गया? राग का। तो जो ज्ञान राग की गुलामी करता है वो अज्ञान है, और जो राग ज्ञान की गुलामी करने लग जाए वो ज्ञान सम्य ज्ञान है। अज्ञानी का ज्ञान राग की गुलामी करता है, और राग अपने अपने इतने चेहरे बदलता जाता है, धर्म कर रहा पूजा तो धर्म है, उसको राजी हो गया, वो राग के रूप को नहीं समझ पाया। अज्ञानी का ज्ञान राग की गुलामी करता है, और ज्ञानी का राग ज्ञान की गुलामी करता है। इसके लिए आपको देखना है तो समय सार गाथा 92-93 देख लो। एक ही दृष्टांत दिया आचार्य ने, ठंड दोनों को लग रही, इसको अज्ञानी को और ज्ञानी को, फिर दोनों बचाव करते कि हाँ करते हैं, तो फर्क क्या है दोनों में से? एक सोच रहा है मैं ही ठंडा हो रहा हूं, मेरा ज्ञान ठंडा हो रहा है, और एक जानता है ये मेरे से सहन नहीं हो रहा है, ये मेरे ज्ञान को क्या कर सकता है? ज्ञान को तो न ठंडा करता न गर्म करता, अपना स्वाद आता खट्टा मीठा चपरा, तो ज्ञान हो जाता है क्या? वैसा कुछ नहीं होता, ज्ञान बिल्कुल निश्चल दर्पण की तरह है। ज्ञान को न मिथ्या सम्यक उपाधि नहीं है, उपाधि क्यों लगी? कि ये जो है उसको वैसा स्वीकार नहीं करता, संशय करेगा, विपरीत लाएगा, कुछ न कुछ करेगा, संशय विपर्यास देवसाय। ये कहते आत्मा भगवान है, ये कहते अभी किधर भगवान है, अभी बनना है, ये कहते आत्मा शुद्ध है त्रिकाल, अरे क्या बात करते, शुद्ध तो सिद्धालय में जाके होगा। अब संशय खड़ा, शुभ उपयोग करते करते मोक्ष होगा, नहीं तीन काल में नहीं होगा, शुद्ध उपयोग से मोक्ष होगा। और एक विपरीत ना मान रहा है, और एक अनंत देवता है, भैया मुझे कुछ लेना देना नहीं, दो रोटी कमाना खाती मर जाना सब, चल में ना, शुभ उपयोग से होता है तो होता होगा, शुद्ध उपयोग से होता है तो होता होगा, मुझे क्या लेना देना। ये अनंत देवता है, ये जो चांस मिला था निर्णय करने का, तो मैं तो उस न्याय के बल से कहता हूं संशय इज बेटर देन विपर्य एंड अनध्यासा। संशय कुछ अच्छा है किससे? विपर्य से और अनध्यासा है, उसमें चांस है। ये क्या चीज है, ऐसा है कि नहीं? अगर ये अंदर में खड़ा हो जाए, मैं भगवान आत्मा हूं कि नहीं, तो मुझे आत्मा बनना है, तो जरा उस शिल्पकार से पूछो जो भगवान एक पद्मासन खड़गासन प्रतिमाएं बनाता रहता है, वो भगवान बनाता है कि बने बने भगवान को बाहर निकाल लेता है? बोलो तेजानी। तो उसमें आरस पत्थर में उसको भगवान दिख जाते हैं, तब छेनी चलाता है या बिना देखे ही ठोक पीट शुरू कर देता है, उसके अनुभव बल से उस पत्थर की क्वालिटी पहचानता है, इसमें खड़गासन या पद्मासन कैसी प्रतिमा निकलेगी। जैनियों के भगवान बनाए नहीं जाते, बने बनाए निकाले जाते, और दुनिया के भगवान समझ लो सिरा दिए जाते। आचार्य को ये इतना कहना है, तुम अंधी दौड़ में शामिल मत हो, भले जहां खड़ा पड़ा वहीं खड़ा पड़ा रहे, लेकिन पहले विचार तो कर ले। श्रीमद जी ने लिखा अमूल तत्व विचार, खूब बढ़िया गा के सुना देते, तो मैं पूछता हूं ये जो छंद है ना, पूरे पांचों छंद अमूल तत्व विचार के, किया विचार कभी? हूँ कौन छू? क्या रिप्लाई है आपका? मैं मनुष्य हूँ, देव हूँ, नाग की त्रियंश हूँ, आसमान जाति तर पर्यंत, अथवा डॉक्टर इंजीनियर वकील हूँ, काला गोरा हूँ, सुखी दुखी रंग रहा हूँ, एक ये भी जवाब है। और समय सार कहता है कि तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड परिचय पत्र हम देते हैं तुम्हारे यहां, आधार कार्ड बने ना इंडिया में सबके, जो जो डिटेल मांगे, आधार कार्ड बनो, पैन नंबर लाओ, उंगली के प्रिंट दो, आंख का कलर, हाइट, क्या क्या सब, उसके लिए सब रेडी है, उसके लिए ज्ञान पूरा है। और ये बड़ा कठिन लगता है, ये बड़ा सरल लगता है, कौन करे क्या करे, ये पर्याय बुद्धि के कारण जीव को ऐसा चलता है। तो मैं ये बता रहा था आपको, इस पंचम काल में भी रत्नत्रय रूप धर्म की प्राप्ति संभव है। देखो ये जैसनाचार्य ने, जैसे हमने तीन दिन चार दिन पहले बताई थी ना, कौन सी गाथा, क्रीड भाई सोना बनाने की, अरे बनाया कि नहीं बनाया, फोर टू सेवन यार, देखो कोई बना ले तो अच्छी बात है ना। वास्तव में गाथा लिखी है चेतन भाई संजीव मालूम है, फिर बनाया किसने, नहीं बनाती, एक लाइन लिखी है, लिखा है णांग फड़िए मूलम अणांगणी तोयेण गभ्यण आगेण रागम हो सुवर्णम दम्पत्म भच्चत्व भाईण। मोक्ष कैसे होगा कहते, ऐसा प्रश्न निराकरण करते हैं, नागफनी की जड़, नागफनी होती नहीं, उसकी जड़ मूल रूप, हथनी का मूत्र, गर्भनाग माने सिंदूर द्रव और शीशा धातु लेड, लेड ऑक्साइड और लेड, इन सब को भस्त्रा धोंकने से अग्नि पर तपाने पर स्वर्ण होता है। पहले वो गांव में होते थे ना, धोंकने इस तरह से वो लोहे आदि को पीटते थे, तो इन सबको मिला करके सोना बना लो। अब आचार्य उसकी टीका लिखते हैं, नागफनी नामक औषधि की जड़, नागनी अथनी का तोय मूत्र और गर्भनाग माने सिंदूर द्रव और नाग शीशा को धोंकने से अग्नि पर तपाने से पुण्योदय होने पर स्वर्ण होता है, और यदि पुण्योदय न हो तो स्वर्ण नहीं होता है। इनका करना जो खड़ा कर दिया, ये दृष्टांत का शब्द। इसके अलावा जो मैं उसकी बात कर रहा था उसमें रहेगी ठीक लाइन, प्रचन सार का था पांच की टीका। अब तुमको विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वामी अपने आत्मा का श्रद्धा, तुम्हें अकृत्रिम चैतन्य बिंदु और अनंत गुण धर्मों का अखंड पिंड, ज्ञान और सुख का बना हुआ ही घन पिंड, ये आत्मा में कुछ भी गड़बड़ झाला नहीं हुआ है, पर्याय में हो रहा है हुआ है, उस स्वभाव को नहीं पहचानना जानने से। सब ज्ञायक का पता कौन बताएगा? ज्ञान ही ज्ञायक का पता है, ज्ञान ही ज्ञायक है, ज्ञान के बाहर ज्ञायक नहीं और ज्ञायक के बाहर ज्ञान नहीं। ऐसा निर्णय करने की ताकत वर्तमान में उसके सुरत ज्ञान में है। तो वो पांचवी गाथा की टीका लास्ट में लिखा, अगर आपको वेद ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई तो उसमें वो लिखते हैं, जीवित कसाय कणतया पुण्यवंद संप्राप्ति हेतुतम स्वराज चारित्रम कर्मापतितम अपनी दूरम उत्क्रम। इतना जबरदस्त शब्द आ रहा, अभी तुम्हारी वेद ज्ञान की आंख खुली है, तुम्हें सत्य समझ में आ गया है, तो अभी कसाय कण का जीवित है, अनंत अनुबंधी तो गई अप्रूट हो गई। जब कसाय कणिका मौजूद है, समय दृष्टि हो गया, वेद ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई, राग करने लायक नहीं रहा, जहर है ये है छोड़ने लायक, सारी अंतर में राग के अभाव रूप अतिंद्रिय सुख की उसने अनुभूति कर ली है, अस्थि नस्थि दोनों चल रही, तो उसको बराबर बात बैठे, तो राग का कार्य क्या, जब वो सराग संयम ग्रहण करता है, सराग चारित्रम कैसा सराग चारित्र, पुण्यवंद हेतु उत्तम स्वराज चारित्रम कर्मापतितम अपी, वो समय दृष्टि जीव को वो कसाय कण का जो विद्वान है अभी कणिका, उसका कार्य क्या होगा, असंयम से हटेगा संयम की ओर कदम बढ़ाएगा, और उसमें सराग चारित्र को ग्रहण करके यानी महाव्रताजी को लेकर तो उसको कहते हैं अमृत चंद्राचार्य देव क्रमापतितम अपि दूरम उत्क्रम, वो क्रम में आ पड़ने पर भी दूर से छोड़ता हुआ। और आगे लिखते हैं सकल कसाय कली कलक विविक्त तया निर्वाण संप्राप्ति हेतु उत्तम वीतराचार्यम स्वाम्यम समुपत्ति, समस्त कसाय कलंक से रहित रूप स्वभाव साधन के द्वारा उस दशा को प्रकट करके वो निर्वाण को प्राप्त कराते हैं। और इस तरह से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एकात्मक एकाग्र गति प्रतिज्ञा था, ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकात्मकता रूप एकाग्रता को मैंने प्राप्त किया। एकाग्रता सब जान एकाग्रता ही तो है, ज्ञान व्यग्र होता है और ध्यान एकाग्र होता है, ये लिखा है ध्यान पर। ज्ञान माने वो व्यक्ति परिवर्तन करता रहता है, ज्ञान परिणाम ये जय स्वभाव पर क्यों नहीं टिकता, तो कभी उसका महात्मा आया नहीं। महात्मा आएगा तो टिकेगा, टिकने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से ये आचार्य जी ने कहा कि वो क्रम में आ पड़ता है। अभी ये गात रहेगी, आपका टाइम हो गया, इसमें एक मिनट लेता हूँ, उसको बोल देता हूँ। इसमें आचार्य जी ने ये कहा जैसे ना आचार्य ने देखिए जैसा नहीं पड़ता ठीक है कि यह जो प्रत्यक्ष आत्मा को देखता है उसके समीप जाकर हम पूछते हैं कि इस प्रकार से नहीं है, ऐसा कौन ज्ञानी साधु वर्तमान काल में कहता है, अर्थात ऐसा कोई साधु नहीं कहता है, तो क्या कहता है? यह कहता है कि यह आत्म स्वरूप मैंने प्रत्यक्ष देखा है, जैसा चतुर्थ काल में केवल ज्ञानी देखते हैं उसी प्रकार देखा है, ऐसा तो कोई नहीं कहता है। सुनना क्या लिखते हैं, तो फिर कैसा आत्म स्वरूप देखा है? केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष की अपेक्षा से परोक्ष श्रुत ज्ञान में, केवल ज्ञान की अपेक्षा श्रुत ज्ञान परोक्ष है, प्रवर्तमान स्वान व प्रत्यक्ष से देखा है। इसका थोड़ा विस्तार करते हैं, यदि भी केवल ज्ञान की अपेक्षा से राग आदि विकल्प रहित स्वसंवेदन रूप भाव श्रुत ज्ञान शुद्ध निश्चय ने इसे परोक्ष कहा जाता है, परोक्ष कहा जाता है, तथापि इंद्रिय तथा मन जनित सविकल्प ज्ञान की अपेक्षा परोक्ष भी होता है, इनके अपेक्षा परोक्ष भी होता है, वह सर्वथा परोक्ष ही है ऐसा कहने में नहीं आता है। क्यों? क्या चौथे काल में केवली भगवान आत्मा को हाथ पर ग्रहण करके दिखाते हैं? अभी उन्होंने कहा देवी देव ध्वनि से कहकर चले जाते हैं, तो भी सुनने के समय श्रोताओं को परोक्ष ही है, पश्चात परम समाधि स्वसंवेदन के काल में प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार इस पंचम काल में होता है, ऐसा भावार्थ है, ये लिखा है। मतलब ये है कि ये कब होगा क्या होगा वो अपने को विकल्प छोड़ करके अपने स्वभाव सामर्थ्य का निर्णय पक्का करना चाहिए। सबसे बड़ी दुखद अवस्था अनिर्णय की होती है, इन डिसीजन है काज ग्रेट फ्रस्ट्रेशन, जब तक निर्णय नहीं है तब तक ये जीव दुखी है।